जय ने कपड़े बदलकर आ चुका था। उसने फिर उन दोनों की ओर देखा। दोनों के ऊपर कंबल नहीं था, दोनों एक साथ सोए पड़े थे। ठंड लगने की वजह से जय ने कंबल निकाला और दोनों के ऊपर डाल दिया। वो लाइट साफ करते हुए युग के पास आ गया। जय का चेहरा युग की ओर था। उसने सोते हुए नाइट लैम्प की रोशनी में जानवी की ओर देखा। क्या मेरा शादी करने का फैसला सही है? पता नहीं कब उसका हाथ जानवी के चेहरे पर चला गया। उसने उसके गाल पर आए बालों को साइड किया। उसके दिल में भी एक अजीब सा सुकून उतरा था। वो भी आंखें बंद करके सोने लगा। आज पहली बार उसे अपना कमरा भरा भरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे का ही नहीं, उसकी जिंदगी का सोनापन भी दूर हो गया था। ये उम्र मुझसे बहुत छोटी है, क्या हम एक दूसरे को सही से समझ पाएंगे? इससे पहले मुझे कोशिश करनी पड़ेगी इसे समझने की। युग इसमें अपनी माँ ढूंढ रहा है। क्या एक 19 साल की लड़की के लिए माँ बनना इतना आसान होगा? मानता हूँ इसके हालात ठीक नहीं रहे। इसे भी प्यार और केयर की ज़रूरत है। वो आंखें बंद करके जानवी के बारे में सोच रहा था। असल में जब जय ने जानवी को होटल में पहली बार देखा था और वो मॉडल के साथ जय को देखकर उसकी आंखों में जो जय ने देखा था, उसकी वो आंखें जय को अंदर तक बेचैन कर गई थीं। जय को सच में लगा कि जो वो कर रहा है वो जानवी के साथ धोखा है। होटल से निकलते हुए उसने जानवी के बारे में पता करवाया था। जो उसे जानवी के बारे में पता चला उसे काफ़ी दुख हुआ। एक बिन माँ बाप की बच्ची, एक दादा की जिम्मेदारी, और वो डिप्रेशन की दवाएं खा रही है। ऐसा नहीं था कि जय को जानवी से पहली ही नज़र में प्यार हो गया, लेकिन वो उसे अच्छी लगी थी। वो उसके साथ ज़िंदगी जीने के बारे में सोचने लगा था, मगर वो साथ ही उसकी और अपनी उम्र से भी डरता था। वैसे भी शादी का उसका पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा था। जैसे जानवी को किसी की ज़रूरत थी, वैसे ही जय को भी किसी के साथ की ज़रूरत थी। सुबह जानवी की आँख खुली। उसने आराम से आंखें खोलते हुए ऊपर की तरफ देखा। मैं कहाँ हूँ? वो आसपास देखने लगी। उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे जयराज पर गई, जो आराम से नाश्ता कर रहा था। वो नहाकर तैयार हो चुका था। उसे देखते ही एकदम याद आया कि उसकी तो शादी हो गई थी। वो एकदम उठकर बैठ गई। उसके ब्लाउज की डोरियाँ ढीली हो गई थीं और उसका ब्लाउज कंधे से आगे आया हुआ था। उसने अपने ब्लाउज को ठीक करते हुए कंबल लिया और आसपास अपना दुपट्टा देखने लगी। जय की नज़र उसके गोरे कंधे पर गई, मगर वो अनदेखा करते हुए बोला, तुम्हारा दुपट्टा ड्रेसिंग रूम में है। वो अपना नाश्ता छोड़कर ड्रेसिंग रूम में गया और उसका दुपट्टा उठाकर उसके पास लाया। जानवी ने शर्मिंदा होकर अपनी नज़र नीचे की और अपना दुपट्टा पकड़ने लगी। गुड मॉर्निंग, जय ने कहा। गुड मॉर्निंग, जानवी धीरे से बोली, क्योंकि वो अपनी शादी की पहली सुबह ही काफ़ी अजीब स्थिति में थी और जय के सामने काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसका बचपना पहले ही दिन बाहर आ गया था। उसे इस बात का काफ़ी पछतावा था कि उसने कपड़े नहीं बदले थे। शीशे वाले पर्दे साइड थे और धूप अंदर आ रही थी। सीधी सी बात थी कि काफ़ी समय हो चुका था। जानवी अपना दुपट्टा अपने ऊपर लेती हुई उठने लगी। सॉरी, मेरी आँख नहीं खुली, जानवी ने धीरे से जैसे कहा। वो बाथरूम की ओर जाने लगी। युग चैन से सो रहा था। जानवी के उठने से वो थोड़ा हिला। जानवी बाथरूम से बाहर आ गई थी। उसके कपड़ों का सूटकेस वैसे ही पड़ा था। वो उसे खोलने लगी। आवाज़ सुनकर जय ड्रेसिंग रूम में गया। क्या चाहिए? उसने पूछा। मैं बदलने के लिए कपड़े देख रही हूँ। पहले तुम चाय पी लो, फिर नहाकर बदल लेना। वो उसके साथ ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई। वो सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। जय इंटरकॉम पर सविता को बुलाता है। बहुत देर हो गई, आपको मुझे उठा देना चाहिए था। आंटी मेरी वेट कर रही होंगी। कोई बात नहीं, तुम आराम से तैयार हो जाओ, यहीं नाश्ता कर लेना। सभी लेट उठते हैं, मैंने कह दिया है कि तुम लेट आओगी। जानवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। इतने में दरवाज़ा खटखटाया। जय ने उठकर दरवाज़ा खोला। सविता आई थी। सविता, मैडम को कपड़े और जो सामान चाहिए वो दे दो और साथ में इनके सामान बता दो, और जो भी इनके सूटकेस हैं उन्हें खोलकर कपड़े अलमारी में सेट कर दो। इन्हें और भी मदद चाहिए होगी वो भी कर देना। जय अपना नाश्ता कर चुका था। वो वहाँ से खड़ा हो गया। उसने फिर जानवी की ओर देखते हुए कहा, तुम नहाकर तैयार हो जाओ, फिर यहीं तुम्हारा नाश्ता आ जाएगा। ठीक है, जानवी ने कहा। जय कमरे से बाहर चला गया। जय के जाते ही जानवी को चैन की सांस आई। चलिए मैडम, आप नहा लीजिए। सविता जानवी के साथ ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने जानवी की अलमारियां खोलकर उसके कपड़े दिखाए, जिनकी शॉपिंग जय ने शादी के समय की थी। थोड़ी ही देर में जानवी नहाकर तैयार हो चुकी थी। सविता ने साड़ी पहनने में उसकी मदद की। उसके लिए नाश्ता भी वहीं आ गया। तब तक युग भी उठ गया था और वो उठते ही जानवी के साथ नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद जानवी ने बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। टेरेस पर एक छोटे आकार का स्विमिंग पूल बना हुआ था और उसके साथ ही वहां बैठने के लिए एक सोफा सेट भी लगा हुआ था। ये बहुत खूबसूरत है, जानवी ने सविता से कहा। ये जो टॉप फ्लोर है ये जयसर का है, जहां पर उनके गेस्ट आते हैं वो रहते हैं। युग का रूम भी साथ ही है और दो बेडरूम और हैं जहां घर का कोई फैमिली मेंबर ऊपर नहीं आता। इस फ्लोर को मैं और मेरे पति दोनों देखते हैं, पूरे घर से बिल्कुल अलग है। इसे जयसर ने अपने हिसाब से बनवाया था। एक और टॉप फ्लोर है, वहां पर पार्टियां होती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बड़े सर और मैडम रहते हैं। सेकेंड फ्लोर पर समर सर और ऋषभ सर रहते हैं। इस फ्लोर पर आपको छोटी सी किचन भी मिल जाएगी और बैठने के लिए छोटा सा लिविंग एरिया भी है। किचन में आप अगर खुद के लिए चाय वगैरह बनाना चाहो तो बना सकते हो, और आपको जो भी चाहिए होगा मैं हूँ यहीं पर। आपकी सेवा के लिए जयसर ने मेरी ड्यूटी लगाई है, सविता ने एक एक करके उसे हर चीज के बारे में बता दिया था।